मंगलमयी धर्म गंगा की चर्चा करते हुए हमने शील की व्याख्या की, जो धर्म का पहला कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। समाधि की व्याख्या की, सम्यक समाधि की। शील पुष्ट नहीं होगा तो समाधि कभी सम्यक नहीं होगी, और समाधि सम्यक नहीं हुई तो अगला कदम, जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है, वो प्रज्ञा का कदम कैसे उठा पाएंगे। शील समाधि के लिए है, समाधि प्रज्ञा के लिए है, प्रज्ञा विमुक्ति के लिए है। विपश्यना के पहले शिविर में गया तो चौथा दिन बीतते बीतते, पांचवा दिन बीतते बीतते, भीतर बिजली सी कौंधी कि अरे प्रज्ञा बहुत प्रिय लगती थी, आज भी लगती है। गीता के ये शब्द बहुत प्रिय लगते थे, आज भी लगते हैं। प्रज्ञा तो प्रज्ञा है, किन्हीं शब्दों में बखानी गई हो। गीता का पाठ करता था, अपनी ओर से जैसे हो लोगों को समझाता भी था, तो बार 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 इस पद का उद्धरण देता था, वीत राग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। उसी को स्थितधि यानी स्थित प्रज्ञता कहते हैं, जो वीत रागता है, वीत भय है, वीत क्रोध है। ये विकारों से मुक्ति ही नहीं हुई तो प्रज्ञा कैसी हुई। इन विकारों से मुक्ति हो तो प्रज्ञा होती है, और प्रज्ञा में स्थित होता है। पढ़ा तो बहुत था, अच्छा भी बहुत लगा था, पर कैसे करें। अब ये करने की विद्या प्राप्त हुई। एक एक बोल इतने स्पष्ट समझ में आने लगे, ना अभिनंदते न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनचाही को देख करके अभिनंदन नहीं करता, अनचाही को देख करके द्वेष नहीं जगाता, वो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हुआ। प्रज्ञा और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना कैसे हो। एक और पद बार बार याद आने लगा, अब उसका अर्थ समझ में आने लगा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियां केवल इंद्रियों के लिए है, इसी अर्थ में उसका उपयोग है। बस तब तक तो ये बात समझ में नहीं आई थी, इंद्रियां इंद्रियों के लिए होती है, इसमें क्या बात हुई, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित कैसे हुआ। अब समझ में आया, आंख केवल देखने का काम करे, काम पूरा हुआ उसका। आंख की इंद्रिय का काम देखना है, बस देख लिया। कान की इंद्रिय का काम सुनना है, बस सुन लिया। नाक की इंद्रिय का काम सूंघना है, सूंघ लिया। जीभ की इंद्रिय का काम है चखना, चख लिया। शरीर की इंद्रिय का काम है स्पर्श, कर लिया। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, देखने में सिर्फ देखना, सुनने में सिर्फ सुनना, सूंघने में सिर्फ सूंघना, चखने में सिर्फ चखना, छूने में सिर्फ छूना, इसके आगे का जो प्रपंच है वो कट रोक दिया जाए। आंखों ने कुछ देखा, बस अब ये अच्छा है बुरा है, सुखद है दुखद है, सुखद है तो राग जगाएं, दुखद है तो द्वेष जगाएं, बंद। बस देखने में तिल देखना, सुनने में केवल सुनना, ये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य का अर्थ अभ्यास करने से क्लियर हुआ, अनुभूति पर उतरने से क्लियर हुआ। नेता तो पाठ किए जा रहा था, पाठ किए जा रहा था, और मनमाना अर्थ, सुना सुनाया अर्थ, पढ़ा पढ़ाया अर्थ, बार बार मन में उसी का चिंतन चलता था, बात नहीं बनी। अब दर्शन होने लगा। सारी साधना हमें दर्शन क्यों ले जाती है? शील समाधि क्यों ले जाता है? समाधि दर्शन कराती है, प्रज्ञा दर्शन को स्पष्ट करती है। भारत बड़ा पुराना देश है, शब्द बदलते हैं, शब्दों के अर्थ बदलते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। दर्शन का एक बहुत सामान्य अर्थ तो है कि खुली आंखों कुछ दिख गया तो कहें आंखों से देख लिया तो दर्शन हो गया, देख लिया। यहाँ जिस दर्शन की बात करते हैं, जो प्रज्ञा से जागता है, उसका इस दर्शन से कोई लेन देन नहीं, जरा भी लेन देन नहीं। दर्शन का एक और अर्थ चल पड़ा ध्यान को लेकर के। ध्यान में बैठे हैं, अब ध्यान में बैठे हैं और ध्यान तो कल्पना का कर रहे हैं, जिस किसी आकृति का ध्यान बार 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 बार, वही निधि ध्यास, वही निधि ध्यास बार बार करते 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 उसका बाहर प्रोजेक्शन होने लगता है, बाहर प्रकटीकरण होने लगता है। हो, हमें दर्शन हो गया, हमारी देवी का दर्शन हो गया, देवता का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, इत्यादि इत्यादि। तुम्हारे मन में जो छाप थी उसका बाह्य प्रकटीकरण हुआ, लेकिन वो दर्शन माना जाता है। ध्यान के क्षेत्र में वो दर्शन दर्शन माना जाता है जो कि प्रज्ञा के क्षेत्र में दर्शन नहीं है। एक दर्शन का और अर्थ चला, वो तो बहुत ही हानिकारक, फिलॉसफी को दर्शन कहने लगे। हमारी फिलॉसफी, तुम्हारी फिलॉसफी, हम ऐसी फिलॉसफी मानने वाले, तुम वैसी फिलॉसफी मानने वाले, हर संप्रदाय की अपनी अपनी फिलॉसफी, अपना अपना दर्शन। ये इनका दर्शन, ये इनका दर्शन, ये इनका दर्शन, ये हमारा दर्शन, ये तुम्हारा दर्शन। अरे कोई लेन देन नहीं भाई इस फिलॉसफी से, बल्कि उलझाएगी। अनुभूति पर जो सच्चाई प्रकट हो रही है वो दर्शन, वो सम्यक दर्शन। अनुभव क्या कह रहा है? अनुभव क्या कह रहा है वो महत्व की बात है। अनुभव हुआ ही नहीं और हम कोरी कल्पना को ही सच मानते जा रहे हैं, सुनी सुनाई बात को सच मानते जा रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई बात को सच मानते जा रहे हैं। अनुभव नहीं हुआ, इसलिए प्रज्ञा के भी तीन सोपान समझना चाहिए। पहली को कहा श्रुत प्रज्ञा, सुना, कोई प्रज्ञा की बात सुनी, किसी का प्रवचन सुना, कोई पुस्तक पढ़ी, सुना पढ़ा और मान लिया कि हम तो जान गए, जाना नहीं अभी, माना है केवल सुना है, तो श्रुत प्रज्ञा। आगे बढ़ा चिंतन प्रज्ञा। अब आखिर मनुष्य है, चिंतन मनन करना मनुष्य का सहज स्वभाव है, इसलिए मनुपुत्र कहलाता है। मनन करना उसका स्वभाव है, मनन करता है, चिंतन करता है। अरे जो सुना है क्या वो युक्तिसंगत है? क्या वो तर्कसंगत है? क्या वो बुद्धिसंगत है? तो ही स्वीकार करे, ऐसा चिंतन मनन चलता है। कठिनाई होती है उसमें भी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हर संप्रदाय के, हर परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी पुरानी परंपराओं के साथ इतना गहरा चिपकाव होता है, तो कहेंगे जो मान्यता अपने चली आ रही है, जो मान्यता चली आ रही है उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना, अकल के दखल नहीं। ऐसा कुछ करोगे तो मानो हमारे शास्त्र की वाणी को नहीं मान रहे, हमारे बाबा की वाणी को नहीं मान रहे, हमारे गुरु की वाणी को नहीं मान रहे, तो क्या होगा? नरक में जाओगे, दोजख मिलेगा। और जब नरक की व्याख्या करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे बाबा ऐसा नरक, ऐसा दोजख नरक, ऐसा कुंभी पाक नरक, ना बाबा ना, अगर इसको जैसा तुम मानते हो वैसे ही मान ले तो नरक से बच जाते हैं। तो हम तो मानते हैं भाई, मानता है भाई, हमारे मानता है। कभी कभी यही बुजुर्ग लोग और तथा कथित धर्म नेता लोग कहते हैं, हम जो कहते हैं उसको जैसा कहते हैं वैसा ही मान लोगे, बिना तर्क वितर्क किए, बिना अकल की दखल के जैसा कहें वैसे ही मान लोगे तो परिणाम क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। और फिर स्वर्ग की जो व्याख्या, सुनते सुनते मुंह में पानी आ जाए, ऐसा स्वर्ग तो चाहिए भाई। अरे मान लेने मात्र से स्वर्ग मिल जाता है तो क्यों ना माने, हमारा क्या बिगड़ा? ठीक नहीं लगता तो भी मानते हैं ना, इनको खुश करते हैं, स्वर्ग जो मिलेगा। ये श्रुति प्रज्ञा, ये चिंतन प्रज्ञा। और अगर चिंतन करता भी है तो एक और कठिनाई है कि जिस परंपरा में जन्मा है और जिस परंपरा में पला है और जिस परंपरा की जो मान्यताएं हैं, दार्शनिक मान्यताएं हैं, चिंतन करेगा तो उनका वकील बन जाएगा, उसका न्यायीकरण करेगा, जस्टिफिकेशन करेगा, यही ठीक है, देखो यही ठीक है, इस कारण से ठीक है, उस कारण से ठीक है। अरे तूने अनुभव तो किया ही नहीं और केवल बुद्धि लगाई। बुद्धि की अपनी सीमा होती है, बहुत सी बातें हैं वो आज बुद्धि संगत लगती है, कल बुद्धि संगत नहीं लगेगी। अनुभूति है वो सच्चाई है, तो अनुभूति पर उतरे। उसे उन दिनों की भाषा में कहा भावनामयी प्रज्ञा। आज तो भावना सेंटिमेंट्स को कहने लगे, भावुकता को कहने लगे, ये अर्थ नहीं। जो भवित हो, जो घटना घटी, अनुभवित हुई, हमें अनुभवित हुई और बार बार अनुभवित हुई, तो भावितो बहुली कतो, भावितो बहुली कतो, बार बार अनुभव हुए जा रहा है, अनुभव हुए जा रहा है, तो वो सच्चाई है, क्योंकि हमारी अनुभूति पर उतरी है। कोई सुनी सुनाई बात, कोई पढ़ी पढ़ाई बात, कोई चिंतन मनन की हुई बात हमारे लिए खाद का काम कर सकती है, खाद्य का काम नहीं। खाद्य का काम तो वही करेगी जो हमारी अनुभूति से जागी है। तो इसलिए प्रज्ञा को समझना है कि वो अपनी अनुभूति से ज्ञान जगाती है, तो प्रज्ञा है, भावनामयी प्रज्ञा है। अपना अनुभव नहीं हुआ तो कभी सही बात जैसी है वैसी समझ में नहीं आएगी। एक उदाहरण से समझे, एक बहुत भूखा आदमी किसी रेस्टोरेंट में चला गया, भूख लगी है, चला गया, पहले ने आकर के मेनू दिया, मेनू का कार्ड रखा, कार्ड पढ़ता है, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है। पढ़ते पढ़ते मुंह में पानी आने लगा, बहुत बढ़िया भोजन। तो ऑर्डर देता है, ये आइटम ले आओ। अब वो आइटम आने में तो समय लगेगा, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, तो क्या करे बैठा, इधर नज़र दौड़ाता है, उधर नज़र दौड़ाता है। जिन लोगों को भोजन परोस दिया गया, वो चख रहे हैं, खा रहे हैं भोजन, उनके चेहरे की ओर देखता है, इनको ये भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब किसी को भोजन स्वादिष्ट लगता है तो उसके चेहरे पर ऐसे ऐसे भाव प्रकट होते हैं, इनको बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तो भोजन सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। दूसरी घटना घटी, फिर मुंह में पानी आया, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। इतने में बैरन लाकर भोजन रख दिया हमारे सामने, हमने स्वयं चखा, अरे स्वाद तो तब आया स्वादिष्ट है कि नहीं है तब मालूम हुआ जबकि हमने चखा। पहला तो श्रुत ज्ञान था, केवल मेनू पढ़ा और मान लिया कि बहुत स्वादिष्ट है। दूसरा चिंतन ज्ञान था, दूसरे के चेहरों की ओर देख करके मान लिया, जरूर जरूर स्वादिष्ट है, हमारी भूख तो नहीं मिटी, हमें तो उसका स्वाद नहीं मिला। ये तीसरा, ये भावनामयी प्रज्ञा, ये जागे तो कल्याण हो। धर्म का भी यही हाल है, सच्चाई हमने सुनी, पहली बात तो सच्चाई सुन ही नहीं पाते, कल्पनाएं ही कल्पनाएं, कल्पनाएं ही कल्पनाएं, लेकिन सच्चाई सुने भी तो केवल मात्र उससे नहीं हुआ, सच्चाई सुननी चाहिए, नहीं सुनेगी तो प्रेरणा कैसे जागेगी, मार्गदर्शन कैसे होगा। सुनी, चिंतन मनन किया, वो भी अच्छी बात है, जो सही बात सुनी वो सही है कि नहीं है, हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हम उसे युक्ति संगत जानते हैं, मानते हैं, बात तो ठीक लगती है, बुद्धि संगत जानते हैं, बात तो ठीक लगती है, तो स्वीकारते हैं, वो भी केवल प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। लाभ होता है जबकि वो अनुभूति पर उतरती है। जब तक अनुभूति पर नहीं उतरती, तब तक हम सच्चाई को समझ नहीं पाते। भीतर ही भीतर क्या हो रहा है हमने अनुभव नहीं किया। इस 3.5 हाथ की काया के भीतर कितनी तरह की बातें होती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, और स्वभाव ऐसा बना लिया, अंतर मन की गहराइयों में स्वभाव ऐसा बना लिया कि भोगता बन के भोग रहे हैं, और भोगता बन के भोग रहे हैं, दुखद लगी तो दुख भोग रहे हैं, सुखद लगी तो सुख भोग रहे हैं, तो भाई बंधन ही बंधन है। भोगता बनकर भोगते बंधन बंधते जाए, और दृष्टा बनकर देखते बंधन खुलते जाए। सारा का सारा मार्ग हम कैसे भोगता भाव से अलग हों और साक्षी भाव में स्थापित हों, दृष्टा भाव में स्थापित हों, तटस्थ भाव में स्थापित हों, जो घटना घटी ऐसा हुआ उसे जान लिया, ऐसा हुआ उसे जान लिया, इस तरह की संवेदना हमारी अनुभूति पर आई उसे जान लिया, जान लिया, साथ साथ ये भी जान लिया कि जो अनुभूति पर आई वो नित्य नहीं है, शाश्वत शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, देर सवेर बदलती है, अरे बदलती है बदलती है, तो उसको क्या अच्छा मान करके उसके प्रति राग जगाएं, क्या बुरा मान करके उसके प्रति द्वेष जगाएं। बुद्धि के स्तर पर हजार कर लो, अनुभूति हुई, सुखद की अनुभूति हुई और हमने राग नहीं जगाया, दुखद की अनुभूति हुई और हमने द्वेष नहीं जगाया, तो हम भोक्ता भाव से दूर हुए। केवल जाना है और केवल बुद्धि विलास करके रह गए, जैसे कि पाठ करते हैं कि भाई राग मत जगाओ, द्वेष मत जगाओ, क्रोध से मुक्त हो जाओ, भय से मुक्त हो जाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर उससे मुक्त तो नहीं हुए। केवल बुद्धि विलास से मुक्त हुआ ना कोई, जब अपनी प्रज्ञा जगे तो सहज मुक्त है सोए। अपनी प्रज्ञा जागनी चाहिए, किसी अन्य को प्रज्ञा जागी और उसने शब्दों पर उतारी, हमने सुनी, हमने थोड़ा चिंतन मनन भी कर लिया, हमें अनुभव तो नहीं हुआ। अनुभव हो, अंतर्मुखी इसीलिए हो रहे हैं कि अंदर जाकर के इस 3.5 हाथ की काया में शरीर का प्रपंच कैसे चल रहा है, चित्त का प्रपंच कैसे चल रहा है, इन दोनों का मिला जुला प्रपंच कैसे चल रहा है, गहराइयों में, गहराइयों में कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ अच्छा लगा, कुछ सुखद लगा, शरीर पर कोई ऐसी अनुभूति हुई जो सुखद लगा, और देखा मन प्रतिक्रिया करने लगा, राग जगाने लगा, दुखद लगा, शरीर पर कोई अनुभूति हुई दुखद लगी, द्वेष जगाने लगा, ये सब देख रहा है, अपने दोष को देख रहा है कि सुखद लगते ही देख राग जगाता हूँ, दुखद लगते ही द्वेष जगाता हूँ, और ये राग और ये द्वेष भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों के जननी हैं, इन्हीं से भिन्न भिन्न विकार जागते हैं। अब इसे देखें तो साक्षी भाव से देखता है, भोक्ता भाव नहीं, अरे नष्ट हुआ ना, कितना ही सुखद क्यों न हो खत्म हो गया, कितना ही दुखद क्यों न हो खत्म हो गया, उत्पन्न होता है देर सवेर समाप्त हो जाता है, उत्पन्न होता है देर सवेर समाप्त हो जाता है, तो प्रज्ञा जागती है। ये शरीर का प्रपंच, ये चित्त का प्रपंच, इन दोनों का मिला जुला प्रपंच न समझें तो कैसे विकार पर विकार, विकार पर विकार जगाते चले जाएंगे, बंधन पर बंधन बनते चले जाएंगे, गांठे पर गांठे बनते चली जाएगी, और इसे अनुभूति से जान रहे हैं छुटकारा होता चला जाएगा, मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, मुक्त हो ही जाएंगे। काम करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े, परिणाम तो मंगल से भरे हुए, कल्याण से भरे हुए, खूब मंगल खूब कल्याण, खूब मंगल खूब कल्याण।